તારીખ 14/8/1998 શ્રી નિયમસાર ગાથા 48 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું આગ્રામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 41
ભગવાન કુંદકુંદ આચાર્ય દેવકી એ રચના આત્મભાવના પર હૈ. આખરી ગાથા મેં વો બાત ઉન્હોને બતાઈ હૈ કે મેને નિયમસાર શાસ્ત્ર કી રચના ક્યોં કી, કે નિર્ભાવનાર્થ આત્મસ્વરૂપ કી ભાવના સભી મુમુક્ષુ સે લેકર જ્ઞાનીઓ ઔર મુનિયો સબ ભાતે હૈ. સભી ભૂમિકા મેં એ ભાને યોગ્ય ભાવ હૈ. કુંદ કુંદ જૈસે મહાન આચાર્ય આત્મભાવના કેસે ભાતે હોંગે એસી જિજ્ઞાસા આજ ભી હમે હો સકતી હૈ. પર ઇસકા એક મૂર્તિમંત સ્વરૂપ એ મહાન પરમાગમ બન ગયા હૈ કે જોને અપને સ્વરૂપ કી ભાવના ભાઈ. इसका ये शुद्ध भाव अधिकार है. जब हम स्वाध्याय करते हैं जिस ग्रंथ का जिस आगम का हम स्वाध्याय करें, हमें किस विषय पर स्वाध्याय करना है वो बात हमारी समझ में स्पष्ट होनी चाहिए. विषय क्या है? ये विषय है आत्मभावना का. आपकी गाथा है 187 नंबर की. संतोष पूर्वा पर रही उपदेश श्री जिन देव का मैं ज्ञान अपनी भावना हित नियम सार सुश्रुत रचा. क्यों रचा? भगवान का जो उपदेश है निर्दोष उपदेश है. पीछे आगे पीछे पूर्वा पर इसमें कोई दोष नहीं है. ऐसा जिनोपदेश को जानकर मैंने भगवान के उपदेश को मेरे आत्मा में परिणमन करा करके मैंने निज भावना निमित्त से निज स्वरूप की भावना निमित्त से ये नियम सार नाम का शास्त्र किया है, यानी रचना की है. तो ये जो सारा शास्त्र के रचना के पीछे उद्देश्य है वो उन्होंने आखिर में बताया है. और स्वाध्याय करते हुए भी इस बात की प्रतीति होती है हमें कि वाकई बहुत उत्कृष्ट प्रकार से इस महान आचार्य ने इस भावना को आत्मभावना को पाई है. तो इसी मुद्दे को लेकर इसी उद्देश्य को लेकर के सारा ग्रंथ में ये बात चली है. इसमें ये शुद्ध भाव अधिकार है. 48 गाथा शुद्ध भाव अधिकार की है. उसमें भी यही बात आचार्य कर रहे हैं. जाते हैं इस प्रकार से। और सवेरा अविनाशा अनिंद्रिया मना विशुतप्पा जगद्योग्य सिद्धा सदर शिवा संसिदो प्रिया। बिन देह अविनाशी अतीन्द्रिय शुद्ध निर्मल सिद्ध जो लोकाग्र में जैसे विराजे हैं जीव है पवनीन क्यों क्या कहते हैं कि जिस प्रकार लोक के अग्र भाग में मैंने सूर्य के ऊपर के भाग में ये चौदह ब्रह्मांड का लोक है यानी ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक तीन लोक हैं इसके ऊपर 45 लाख योजन प्रमाण सिद्ध शिला है जहाँ अनंत काल से अनंत सिद्धात्मा विराजे हैं विराजते रहे हैं और अनंत सिद्ध विराजते रहेंगे।
बराबर
ये जीव की अवस्था का सर्वोत्कृष्ट पद है जो सिद्ध पद है वो जीव की अवस्था का सर्वोत्कृष्ट पद है इससे आगे कोई पद नहीं है यानी सर्वशुद्ध है। कैसे है सिद्ध परमात्मा सिद्ध भगवंत अशरीरी है उनको शरीर नहीं जोड़ा शरीर का संयोग जीव को संसार में पूर्व कर्म के फल स्वरूप होता है
जी।
और सिद्ध भगवंत है कि मुक्तात्मा है और मोक्ष है तो निष्कर्म अवस्था है। कैसे है अवस्था
निष्कर्म
अवस्था है। ऐसे तो अन्य दर्शन में भी मोक्ष का स्वीकार किया गया है लेकिन निष्कर्म अवस्था रूप मोक्ष का स्वीकार वहां नहीं किया गया वहां उस प्रकार का परिज्ञान भी नहीं है। तो ये अशरीरी है मैंने आखिर का चरम शरीर व्यतीत होने के बाद फिर नया शरीर ग्रहण करने का कोई कर्म बचा नहीं था तो वो अशरीरी हो गए। जिस समय में वो शरीरी अशरीरी हो गए उसी समय में अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण से उस हिदालय में पहुंचे एक ही समय में।
बराबर
एक शरीरी है अविनाशी है इसी अवस्था में हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अभी सिद्ध पद का कभी भी विनाश होगा क्षय होगा और फिर कभी संसार में आएंगे ऐसा बनने वाला नहीं। जबकि अन्य मत में प्रसिद्ध है कि भगवान भी अवतार लेते हैं और चलता है सब कुछ भगवान अवतार के नाम पर भगवान के अवतार के नाम पर संसार में भी अनेक संप्रदाय चलते हैं। तो अविनाशी अवस्था है कभी वहां से वो च्युत होकर के नाश होकर के इस अवस्था का फिर संसार में आने वाले नहीं है। अतीन्द्रिय है जब शरीर नहीं है तो इंद्रियां भी नहीं है और अतीन्द्रियां तो नहीं है शरीर की इंद्रियां तो नहीं है क्योंकि शरीर नहीं है किंतु भावेंद्रियां भी नहीं है
जी।
भावेंद्रिय है तो जीव के कल्पग्न दशा के मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय होती है। जबकि भगवान को स्थित परमात्मा को तो अर्यंत दशा में 13वें गुण स्थान में दीक्षाई ज्ञान हो गया है, सर्वसम ज्ञान संपूर्ण हो गया और समाप्त हो गया। और 13वें गुण स्थान से क्षाई ज्ञान होने से कोई अल्पग्न दशा सिद्ध परमात्मा को होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए शरीर ने होने से द्रव्येंद्रियां तो नहीं है, किंतु भावेंद्रियां भी नहीं है। इसलिए निर्मल और विशुद्ध आत्मा है, संपूर्ण मल रहित दशा जिसकी है ऐसे है। और सभी प्रकार से मैंने सभी अनुजीवी गुण और सभी प्रतिजीवी गुण अनंत गुण सभी गुण शुद्ध रूप परिणमन कर रहे हैं। मैंने वो आत्मा विश्व संपूर्ण शुद्ध आत्मा है, विशुद्ध आत्मा मैंने संपूर्ण शुद्ध आत्मा हो गए हैं। ऐसे जैसे वे सिद्ध है ये दृष्टांत दिया है आत्मभावना में, आत्मभावना में इसी का दृष्टांत लिया है कि जैसे ये सिद्ध परमात्मा की दशा प्रकट समझ में आती है, वैसे ही संसार में सभी जीव का मूल स्वरूप वैसा ही है,
बराबर
अवस्था वैसी नहीं है। क्यों के संसार में ऐसा लिखा है, तो संसार में कोई सभी संसारी जीव सिद्ध सदृश अवस्था में तो नहीं है, आवाज तो नहीं सुनाई देगी,
नहीं
पावर को आने तो
चालू करना टाइम चालू करो।
जैसे सिद्ध परमात्मा का वर्णन किया मूल स्वरूप से मेरी आत्मा और सभी आप सबों की आत्मा, संसार में कोई जीव बाकी नहीं है, भवी भी नहीं और अभवी भी नहीं, सभी जीव वैसे ही है। जब मैं मेरे इस सिद्ध समान मेरे स्वरूप की भावना पाता हूँ तो मेरी नजर भी बदल जाती है। आचार्य श्री क्या कहते हैं कि जब मैं मेरे ऐसे सिद्ध समान स्वरूप की भावना पाता हूँ तो मेरी नजर भी बदल जाती है, मेरी नजर में सभी आत्माएं सिद्ध समान ही दिखते हैं। चाहे कोई अनुकूल होने का परिणाम करें चाहे कोई प्रतिकूल होने का परिणाम करें, चाहे कोई बैर विरोध करे, अरे शिर छेद करने तक परिणाम करें, तो भी हमारी नजर में तो वो सिद्ध परमात्मा ही है।
बराबर
ऐसी नजर ज्ञान दशा में द्रव्य दृष्टि होते हुए और आत्मभावना आते हुए ऐसी नजर हो जाती है। टीका इस गाथा का जो विषय है वो तो सर्वप्रथम टीका के प्रथम वचनामृत में ही आचार्य श्री ने मुनिराज ने इस ग्रंथ का टीका करने वाला पद्म मल्हारी देव एक बहुत जबरदस्त मुनिराज हैं जिन्होंने इस ग्रंथ की टीका की है, ऋतु की टीका की। हर गाथा की टीका करते हुए प्रथम वचन में ही वो कहते हैं इस गाथा में आचार्य श्री का कहने का आशय क्या है। जो भी ज्ञानी के मुनि के आचार्य के वचन होते हैं उस वचन में हमें हमेशा हमेशा इस वचन के आशय को सबसे पहले समझना चाहिए। वचन तो वचन होते हैं, ऐसे वचन अज्ञानी भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें असलियत नहीं होती, एक नकली चीज होती है। इसलिए ज्ञानी के वचन में और जो ज्ञानी नहीं है ऐसे लोगों के वचन में यह अंतर है कि उसमें आशय फर्क होता है। क्या फर्क होता है?
आशय,
आशय का फर्क होता है। आशय मैंने कहने का हेतु, कहने का इरादा, कहने के पीछे इस वचन के कहने के पीछे का अभिप्राय उसको कहते हैं आशय। तो कहते हैं कि और यह कार्य हमेशा तथा कारण हमेशा में अंतर न होने का कथन है। क्या कहते हैं? बात कही सिद्धात्माओं की, वो कार्य समयसार है, पर उस तरह से सभी आत्माओं की बात कही वे सभी आत्मा कारण समयसार है। समयसार मैंने शुद्धात्मा, जिस शुद्धात्मा के पर्याय माने कार्य जैसा समय सार स्वरूप आत्मा है वैसा हो गया, उनको कहते हैं कार्य समय सार। लेकिन जिसका कार्य तो नहीं हुआ जिसका संसार में है इसलिए कार्य तो नहीं हुआ, फिर भी ऐसे होने का कारण मूल स्वरूप में मौजूद है, उनको कहते हैं कारण समय सार। तो इस गाथा में टीकाकार मुनिराज ऐसा कहते हैं कि जो सूत्रकर्ता आचार्य कुंदकुंद देव है उनका आशय हमको ही दिखता है। तो कार्य समय सार और कारण समय सार में कुछ अंतर नहीं है ऐसा दिखाना चाहते हैं।
बराबर।
कारण मतलब कि जैसा कारण समय सार है वैसे ही सिद्धात्मा होता है, यानी हमारी आत्मा सिद्ध समान है। बनारसी दास जी ने गाया सीध समान सदा पद मेरो, सदा माने अनादि अनंत, भूतकाल में अनंत काल पहले कभी भी देखो मैं सीध समान रहा हूं, वर्तमान में भी वैसा ही हूं और भविष्य में भी वैसा ही रहूंगा, ऐसा मेरा स्वरूप है। संसार के जीव ऐसे स्वरूप को भूले हुए हैं, और जब से मुमुक्ष होते हैं अपने मूल स्वरूप के संभाल करते हैं, फिर ज्ञानी बनते हैं, फिर धनी बनते हैं, फिर वही शिव परमात्मा बन जाते हैं संभालते हुए। इसलिए अपनी भावना भाते भाते उपदेश देते हैं कि सभी संसार में जीव वैसे ही, हमारी नजरिया ऐसी चलती है, फिर हम किसी के प्रति कुछ भी अयुक्त परिणाम अयोग्य परिणाम कैसे करेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस प्रकार लोकाग्र में सीध प्रवृष्टि भगवान निश्चय से पांच शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण अशरीरी है, निश्चय से नर नारकादि पर्यायों के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण अविनाशी है, परम तत्व में स्थित सहज दर्शन आदि रूप कारण शुद्ध स्वरूप को युगपत जानने में समर्थ ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा जिसमें से समस्त संशय दूर कर दिए गए हैं, ऐसे स्वरूप वाले होने के कारण अतीन्द्रिय हैं, मलजनक क्षयोक्षमिक आदि विभाव स्वभाव के अभाव के कारण निर्मल हैं, और द्रव कर्म तथा भाव कर्म है स्वभाव के कारण विशुद्ध आत्मा है। ठीक उसी प्रकार संसार में भी यह संसारी जीव किसी नए के बल से, मैंने किसी नए के दृष्टि से शुद्ध है। एक वाक्य है पूरा गाथा की टीका का पूरा पैराग्राफ एक वाक्य में ही लिखा हुआ है। अब हम एक एक जो अल्प विराम लिखे हैं एक एक वाक्य को प्रतिपादन करेंगे। क्या कहते हैं मूल गाथा में सिद्ध भगवान के वर्णन करते हुए एक एक विशिष्टता कुछ एक विशिष्टताओं बताएं। वैसे तो सिद्ध परमात्मा अनंत गुण विशिष्ट है, कैसे हैं अनंत गुण विशिष्ट है
बराबर,
लेकिन अनंत गुण कहने के लिए अनंत समय चाहिए तो हमारे आयुष्य में है ही नहीं। इसलिए ऐसे स्वरूप को ज्ञान में ले सकते हैं, ज्ञान में अभेद ज्ञान में पूरा स्वरूप आ सकता है, सूक्ष्म ज्ञान में कुछ एक भेद उसको जानने में आते हैं, कुछ एक विशिष्टताएं समझ में आती हैं और वो वचन द्वारा प्रकाशित होती है, जो वक्तव्य है उसको कहे जाते हैं। इस तरह से यहाँ जो भी विशिष्टताएं बताई एक एक विशिष्टता का स्पष्टीकरण दे रहे हैं टीका में पद्म परम भंडारी देव कि जिस प्रकार लोकाग्र में सिद्ध परमेष्टि भगवान निश्चय से पांच शरीर के प्रपंच के अभाव के कारण से अशरीरी है। शरीर के पांच प्रकार हैं, औदारिक आदि जो है ना, तो पांचों प्रकार में से सब पुद्गल परिणाम के हैं, पुद्गल पर्याय हैं शरीर की जड़, उसमें से किसी प्रकार पांच प्रपंच मैंने विस्तार, पांचों प्रकार का कोई भी विस्तार हो, भेद प्रभेद हो, सिद्ध भगवंत को एक प्रकार का किसी भी प्रकार का शरीर नहीं होने से वे अशरीरी है, ये स्पष्टीकरण दिया अशरीरी के विषय में। निश्चय से मैंने वास्तविक रूप से खरेखर नर नारकादि शरीर पर्यायों के त्याग ग्रहण के अभाव के कारण अविनाशी है। संसार में मृत्यु को नाश बताया गया है, उसमें चार गति के परिणाम, चार गति की पर्याय हैं, तो आयुष्य पूरा होते ही उनका नाश होता है। तब लौकिक भाषा में बोला जाता है कि वो मर गया, ये आदमी मर गया, ये पशु मर गया। वास्तव में कोई मरता नहीं है, लेकिन वैसा प्रकार अवस्था का जो है आयु पूर्ण होकर के अवस्थांतर होने का, अन्य पर्याय धारण करने का, ऐसा प्रकार सिद्धात्माओं को नहीं होता। जब ऐसा प्रकार नहीं होता तो उनको नाश पना चला गया। आयु का नाश कोई नाश है, वास्तव में स्वरूप का नाश तो होता नहीं, तो वो तो चर्चा इधर है ही नहीं। चर्चा तो पर्याय की है, सिद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है। तो सिद्ध पर्याय कैसी है कि अविनाशी है। सिद्ध पर्याय सादी अनंत है, अनादि अनंत नहीं है किसी को, स्वरूप अनादि अनंत है, लेकिन यहां बात चलती है सिद्ध परमात्मा की। फिर भी उनको अविनाशी बोला गया है, क्यों कि उनको चार गति में से किसी भी पर्याय का नाश होने का प्रकार अपनी अवस्था में बनता नहीं है, इसलिए वो उनका नाश नहीं होता। मनुष्य का नाश होता है, नारक का नाश होता है, त्रिज का नाश होता है, मतलब इस अवस्था का नाश होता है, ऐसा ग्रहण त्याग होता नहीं। सिद्ध अवस्था में वैसी पर्यायों का ग्रहण त्याग नहीं होने के कारण से इस अवस्था को भी अविनाशी कही गई है। ये बात संग्रह नहीं से है, वास्तव में देखा जाए यानी एवं भूत नहीं से देखा जाए तो ये शास्त्र ज्ञान का विषय हुआ। सिद्ध भगवान की भी पर्याय एक एक समय की है। कैसी है? एक समय की पर्याय, जो समय की किसी की होती नहीं। छौ द्रव्य है, छौ द्रव्य के पर्याय समय समय की ही होती है, ये वस्तु का स्वरूप है, इसलिए उसमें कारण कार्य का कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। एक बात, अब सिद्ध परमात्मा भी जीव द्रव्य है तो उनकी अवस्था भी एक एक समय की है, लेकिन वो शुद्ध पर्यायातिक नहीं की बात हुई। यहां संग्रह में से उसी अवस्था को अविनाशी बताई दी है, क्योंकि वैसे शुद्ध अवस्था जो हुई वो हमेशा सिद्ध पद में ही विराजमान रहेंगे, कभी भी अवतार धारण नहीं करेंगे, कभी भी संसार में नहीं आएंगे, या कभी भी इनकी अवस्था में कमी बेशी होगी नहीं, वो भी संग्रह नहीं है। वास्तव में तो एक समय की पर्याय में षड्गुण हानि वृद्धि होती ही है अगुरु गुण के कारण से, तो शुद्ध एवं भूतने का विषय हुआ। तो यहां वो विषय कौन सा चलता है कि वैसे की वैसी अवस्था हमेशा हमेशा अनंत भविष्य काल तक तो सिद्ध परमात्मे सिद्ध भगवंत ही रहेंगे, उसमें कोई फेरफार होने वाला नहीं है। करणानुयोग के सिद्धांत अनुसार जीव की अवस्था के गुण स्थान अनुसार 14 भेद है, पर उस 14 गुण स्थान से पार होकर के जो अवस्था होती है तो 15वीं अवस्था सिद्ध पद है और वो अविनाशी पद है। ऐसा कहने का आशय वो हमेशा वो सिद्ध भगवंत ही रहेंगे, न 14वें गुण स्थान में आएंगे न कोई इसके नीचे वाले कोई गुण स्थान में आएंगे। ये कहा और परम तत्वों में स्थित सहज दर्शन ज्ञानादि रूप कारण शुद्ध स्वरूप को युगपद जानने में समर्थ, ऐसी सहज ज्ञान ज्योति द्वारा जिसमें समस्त संशय है। संशय तो सूक्ष्म ज्ञान में होता है, अल्पज्ञता में होता है, संपूर्ण ज्ञान में कभी होता नहीं है, क्योंकि एक साथ सबको जान लिया इसलिए वो अतींद्रिय है। अब ये अतींद्रिय विशेषण को या अतींद्रियता के विशेषता को बताने में टीकाकार मुनि महाराज ने एक बहुत जबरदस्त बात हमारे प्रयोजन की कर दी है, उस पर थोड़ा ध्यान खींचना चाहिए। हमको स्वाध्याय में सिर्फ शब्द अर्थ नहीं करना है, न केवल शब्दार्थ को करना है, न केवल हमको भावार्थ को भी करना है, न केवल हमको नयार्थ को भी करना है, न केवल हमको मतार्थ को भी करना है। हमको जो कुछ करना है वो परमार्थ को करना है। किसको करना है? परमार्थ को करना है। और ये पारमार्थिक हेतु से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ये शिविर लगाने के पीछे पदम सिंह जी ने टाइटल तो बहुत बड़ा अच्छा दिया है, निज कल्याणार्थ आत्म भावना, ये आत्म भावना का ही विषय चल रहा है, तो टाइटल दिया है ना, वही सब्जेक्ट हमको दे दिया, आप वही बताइए। आत्म भावना का ही विषय चलता है, आत्म भावना का ही शिविर लगाया। तो इसमें परमार्थ क्या है? शब्दार्थ तो हम करते गए, मुनिराज ने भी किया, हम भी इसका स्पष्टीकरण देते गए, अब इसका परमार्थ क्या है? इसका एक संकेत यहां अतींद्रिय विशेषण को बताते हुए बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से ये बात कही गई है। कहां बात कही है? परम तत्व में स्थित सहज दर्शन ज्ञान सहज दर्शन आदि रूप कारण शुद्ध स्वरूप को युगपत जानने में। सहज दर्शन आदि रूप अपना मूल स्वरूप है, उनको कारण शुद्ध स्वरूप, क्या कहा? कारण शुद्ध स्वरूप। इस ग्रंथ में टीकाकार मुनिराज ने प्रत्येक अधिकार में और बहुत सी गाथाओं में मूल स्वरूप को दिखाते हुए इसका कारण शुद्ध स्वरूप ऐसा बात क्या कहा है, कारण शुद्ध स्वरूप ऐसा शब्द प्रयोग कहा है, किया है, ये क्या चीज है? ये हमारे प्रयोजन की, हमारे पारमार्थिक प्रयोजन की बात है यहां पर। क्यों? कि हमें हमारा कार्य बाकी है, इसका हमें कारण चाहिए। कौन सा कार्य हमारा बाकी है? कि हमारा आत्म कल्याण अभी तक हुआ नहीं। सिद्ध परमात्मा तो सिद्ध परमात्मा हो गए, हम तो सिद्ध परमात्मा हुए नहीं। लेकिन ऐसा कार्य संपन्न होने का कारण हमारे में मौजूद है, एक पारमार्थिक दृष्टिकोण से विचारने लायक बात होने से टीका करते हुए इस पर अंगुली निर्देश किया गया है। स्वरूप तो स्वरूप है, लेकिन स्वरूप स्वरूप है इतनी सादी सीधी बात नहीं है। ये कारण रूप स्वरूप है और कारण में भी कारण शुद्ध स्वरूप है, उतनी बात कहते हैं। मतलब क्या है? कि जिस स्वरूप के अवलंबन लेने से हमारी पर्याय में कार्य शुद्ध होता है, ऐसा अवलंबन भूत कारण ये स्वरूप है, यही दिखाने के लिए उसको कारण शुद्ध स्वरूप कहा गया है। प्रयोजन दो तरह का होता है, एक अवलंबन लेने का और एक अवलंबन लेकर के जिस दशा को हमें प्राप्ति करनी है उस दशा का। अब दो प्रकार का जो प्रयोजन है उसमें एक प्रयोजन हमारे पास है, एक प्रयोजन भूत अवलंबन भूत विषय हमारे पास है, कि जिसका अवलंबन लेने से हमारा दूसरा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही दिखाने के लिए, यही पारमार्थिक दृष्टिकोण के दिखाने के लिए स्वरूप की बात, ये मूल स्वरूप ऐसा है ऐसा नहीं कह करके, ये कारण शुद्ध स्वरूप है, कारण शुद्ध आत्मा है, कारण शुद्ध परमात्मा है, ऐसा बार बार हम कहते हैं इष्टिका में। दूसरी बात वो है कि हम लोग हमारा आत्मकल्याण के लिए अनेक प्रकार के कारण को ढूंढते हैं, पर वो सभी कारण सभी निमित्त बाह्य कारण होते हैं। जबकि यहां कहते हैं कि तुम्हारा कारण तुम्हारे में है, तुम्हारा कारण कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने निज स्वरूप को पहचानो, समझो और उसका अवलंबन ले लो। ये अवलंबन लेने योग्य है, ये अनुभवन करने योग्य है, वही कल्याण स्वरूप है और वही सर्व मंगल स्वरूप है। तो वो बात लिखने के पीछे हेतु यह है कि ऐसा परमागम, बहुत महान परमागम है ये, भविष्य में भी अनेक मनुष्यों के हाथ में वो आने वाली चीज है, उनको एक अवलंबन भूत कारण अपना स्वरूप अपने भीतर में है, वो बात समझ में आ जाए और वो अवलंबन ले लें तो उसका फला हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। ऐसा परमार्थ यहां से निकलता है। बात को कह रहे हैं सिर्फ परमात्मा की अवस्था के जी, अतीन्द्रिय किसका विशेषण चल रहा है, सिद्ध परमात्मा के विशिष्टताएं बहुत है, इसमें से एक विशिष्टता की बात कर रहे हैं। लेकिन वो पर्याय की विशिष्टता हुई कहाँ से? ऐसी सिद्ध दशा सिद्ध भगवंत को भी कैसे हुई कि उन्होंने अपने कारण शुद्ध स्वरूप का अवलंबन लिया, तब हुई है। इसलिए अपने कारण को अपने भीतर में समझो, अपने कारण में अपने कारण को अपने भीतर में देखो, पर उसका ही अवलंबन ले लो, कार्य हो जाएगा। यही इस शब्द प्रयोग के करने के पीछे टीकाकार मुनिराज का पारमार्थिक आशय है। क्योंकि सबसे पहले वचनामृत में उन्होंने कह दिया कि जैसा कार्य समय सार सिद्ध परमात्मा है, वैसा ही कारण समय सार संसार में सभी जीवों मूल स्वरूप में है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सिद्ध भगवान के कारण समय सार में और हमारे कारण समयसार में कोई अंतर है क्या? कि नहीं है। कारण समयसार में एक अंश भी अंतर समझना सिद्ध भगवंत के कारण समयसार में और हमारे कारण समयसार में या किसी के कारण समयसार में एक अंश भी अंतर समझना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, ऐसा योग सार में योगिंद्राचार्य बात करते हैं। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। संसार में बड़े पाप अनेक प्रकार के जाने माने हैं, लेकिन ऐसे पाप संसार में लोग नहीं जानते हैं जो हमारे आचार्यों ने बहुत गंभीर बातें कर दी हैं। विषय कषाय के परिणाम करके नारकादि निगोदादि जैसे में जाते हैं, ऊपर ऊपर सब ऐसे जाते हैं, मांगते हैं, जानते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में निगोल में जाने का कारण या दुर्गति में नरकादि गति में जाने का कारण अपने मूल स्वरूप को पहचाने बिना, जाने बिना, अवलंबन किए बिना हम भूले हुए हैं, इसलिए हमारी ऐसी अवस्था होती है। और वही इस मूल पाप को ये सबसे बड़ा वो है, उसको कहते हैं मिथ्यात्व का पाप। क्या कहते हैं उसको?
मिथ्यात्व का पाप।
उसको मिथ्यात्व का पाप कहते हैं, तो सबसे बड़ा है। तो टीका में इसका हमको भी निर्देश किया है कि जो सिद्ध परमात्मा अतीन्द्रिय क्यों है, उसको अतीन्द्रिय पना क्यों प्रकट हुआ है अपनी अवस्था में, कि वो कारण शुद्ध स्वरूप को, तो जिस कारण शुद्ध स्वरूप परम तत्व रूप है और उसमें सहज दर्शन आदि रूप अनिरुक्त गुण स्वभाव है, उनको युगपत जानने में समर्थ है, तो कारण समय सार को अवलंबन लेकर के, पूर्णतया अवलंबन लेकर के, अल्प अवलंबन से साधक दशा होती है और पूर्ण अवलंबन से परमात्मा दशा होती है। ऐसे होते हुए एक ही साथ सब जानने में समर्थ हो गए, यानी सभी संशय नहीं रहे, अल्पज्ञता नहीं रही, इसलिए उनको कहते हैं कि वो अतीन्द्रिय है। और मल जनक क्षायु क्षमिक आदि विभाव स्वभावों के अभाव के कारण से निर्मल है, भगवान सिद्ध परमात्मा की अवस्था संपूर्ण निर्मल है। मलजनक सूक्ष्मिक आदि कोई प्रकार के भाव नहीं है। सूक्ष्म भाव को भी मलजनक कहा है। देखो सूक्ष्म भाव को मलजनक मलजनक क्षायूक्ष्मिक आदि विभाव स्वभाव, एक सूक्ष्म भाव है वो विभाव स्वभाव भी है और मलजनक भी है। कैसे तो थोड़ा सूक्ष्म विषय है कि ये सूक्ष्म ज्ञान है, केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, इसके पहले सूक्ष्म ज्ञान सभी को होता है
जी।
और साधक अवस्था में तो उसको सम्यक ज्ञान भी कहते हैं, सम्यक मत ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनःपर्य ज्ञान। मनःपर्य ज्ञान तो सम्यक ही होता है, वो तो तीनों असम्यक भी होता है और सम्यक भी होता है। ये विभाव स्वभाव क्यों है कि स्वभाव ऐसे अधूरे होते नहीं है, जबकि सूक्ष्म ज्ञान अधूरा ज्ञान है, कभी संपूर्ण ज्ञान होता ही नहीं। अधूरापन है तो अधूरापन है, लेकिन यहाँ श्री गुरु कहते हैं कि ये मलजनक है। वो कैसे? हाँ, क्योंकि सम्यक मति शुद्ध ज्ञान है वो स्वपर प्रकाशक तो है ही। स्वपर प्रकाशक है कि नहीं है? कि है, लेकिन अधूरापन होने के कारण से उसमें जब परपदार्थ का प्रकाशन होता है, जब उसमें परपदार्थ जानने का उपयोग चलता है, तब अधूरापन के कारण से अल्प मात्रा में परसत्ता अवलंबन हो जाता है। ये परसत्ता अवलंबन शिल्पना के कारण से क्या विभाव क्षयोक्षमी ज्ञान में परसत्ता अवलंबन शिल्पना होने के कारण से मल की रागादि की उत्पत्ति चारित्र गुण में हुए बिना रहती नहीं। भले वो स्वभाव रूप हो लेकिन वो मल है, उसमें मलिनता होती ही है। पर पदार्थ को जानने के लिए उपयोग चलता है, भले ही वो सम्यक ज्ञान का उपयोग हो, पर सत्ता का आंशिक अवलंबन हो जाता है वहां, और चारित्र गुण में रागांश की उत्पत्ति हुए बिना रहती नहीं, पूर्ण वितराग दशा नहीं होती। इसलिए क्षायोक्षमी भाव को भी मलजनक कहा है
जी।
यही कारण से मलजनक कहा है, बाकी तो वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान तो निर्मलता का कारण होता है, लेकिन यहाँ अवलंबन का भी एक मुद्दा है, एक फैक्टर है, उसको ध्यान में लेते हुए अधूरी दशा वो अधूरी दशा है, उसका पूर्ण स्वभाव दशा नहीं है। यानी वो पूर्ण स्वभाव दशा नहीं होने के कारण से उनको विभाव स्वभाव माना गया है। क्षयोक्षमिक भाव को विभाव स्वभाव माना गया है। ऐसा सिद्ध परमात्मा को भी सब विभाव स्वभाव नहीं होने से वे निर्मल है, संपूर्ण निर्मल है, और द्रव्य कर्म तथा भाव कर्मों के अभाव के कारण विशुद्धात्मा है। न द्रव्य कर्म का संयोग है, न भाव कर्म का बीज। अशुद्धता तो मिलावट से मानी गई है, जैसे घी अशुद्ध होता है तो क्या है, कोई भी चीज की मिलावट होती है, दूध में पानी डालते हैं तो दूध शुद्ध नहीं रहा, शुद्ध दूध नहीं रहा, वो घी में मिलावट हुई तो शुद्ध घी नहीं रहा वो। ऐसे भाव कर्म और द्रव्य कर्म के साथ अपनापन और संयोग कुछ भी नहीं है भगवान को, सिद्ध भगवंत को, इसलिए वो विशुद्ध आत्मा है। जैसे वे हैं ठीक उसी प्रकार संसार में भी, तो संसार तो अवस्था है, यहां आत्मा की भावना का प्रकरण चल रहा है। क्या प्रकरण चल रहा है ग्रंथ में?
आत्म भावना
का प्रकरण चल रहा है। तो कहते हैं कि भले ही आप संसार में प्रसिद्ध रूप से संसारी जीव होते हुए भी आपका मूल स्वरूप जो भाने योग्य है वो तो जैसा सिद्ध परमात्मा है वैसा ही
बराबर।
आप मत भूलिए, इसको भूलना मत, कभी भी भूलना मत, ऐसा कहते हैं। और जो भूले हुए हैं संसार में, तो लोग भूले हुए हैं, अपना सिद्ध समान स्वरूप को जानते नहीं, मानते नहीं, पहचानते नहीं, अवलंबन लेने का तो सवाल नहीं रहा। उनको जब श्री गुरु ये बात बताते हैं तब तो उसको परम उल्लास आना चाहिए। क्या भिखारी को उनके घर में गाड़ी हुई बहुत बहुत बड़ी संपत्ति दिखाई जाए तो उसको कितना उल्लास होगा? हाँ, देखने मात्र से नहीं, सुनने मात्र से उल्लास हो जाएगा।
बराबर
होगा कि नहीं होगा? एक दृष्टांत से ले, जैसे कोई भिखारी था, उनको मालूम नहीं था कि मेरे पूर्वज ने, दादाओं ने, बहुत बड़ी संपत्ति वाले थे और अपनी संपत्ति घर में ही गाड़ी हुई है। पहले तो बैंक थी नहीं, ऐसे ही होता था, सोने के चरू में रतन रखे गए थे और भरचक, और वो चरू भी छोटा मोटा नहीं, 10 फीट डायमीटर का समझ लो। हाँ, कितना? पूरा एक कमरा जैसा हुआ है। हाँ, तो भी मांगता है कोई इनके, कोई हितेच्छु, कोई बुजुर्ग आदमी विदेश से आया है, देखा कि वो बेचारा तो भीख मंगा हो गया है, क्या बात हुई भी, क्योंकि दादाओं के पास तो बहुत बड़ी संपत्ति थी होगी, लेकिन अभी तो भीख मांगता है, वो बात जरूर है, प्रत्यक्ष है। तो कोई व्यापार व्यापार में उन लोगों ने कुछ संपत्ति गंवा दी, ऐसी बात करना तो सुनने में नहीं आई। तब उनको मालूम हुआ, कह रहे वो लोग तो ऐसे ही थे, क्यों तो चोरी लूट का भय रहता है तो ऐसे डांट काट देते हैं। तो उनको कोई स्मरण आया कि वहां वो बात तो हुई थी ऐसे, उसने बता दिया कि देखो, जब व्यापारादि में तुम्हारे पिताजी ने, दादाजी ने, परदादाजी ने कोई नुकसान नहीं किया तो तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे घर में ही है। तो तर्क कुतर्क नहीं करेगा कि मैंने देखी नहीं मैं कैसे मानूं, और देखी नहीं तब तक मुझे उल्लास में कैसे आएगा। हाँ श्री राम जी करेगा कुछ नहीं, सुनते ही उसको आनंद परम उल्लास हो जाएगा। अरे ऐसी बात है, मैं आज रात को वो काम करूंगा, दिन में करने में जोखिम है, पर कर लेता है और प्राप्त कर लेता है। वैसे श्री गुरु जब अपना कारण समय सारूप शीघ्र समान अपने आत्मा को बहाते हुए दिखाते हैं, बताते हैं, तो हमें भी यही श्री गुरु की बात सुन करके परम उल्लास आना चाहिए। उसी प्रकार यह संसारी जीव किसी नयन के बल से उसमें परमार्थ है, ये बात कहने मात्र की नहीं है, सुनने मात्र की नहीं है, विकल्प करने मात्र की भी नहीं है, नए ग्रहण के नए के बल से ऐसी बात होनी चाहिए। मैंने हमारा शुद्ध नए का उत्पाद होना चाहिए, पुरुषार्थ से, बल माने पुरुषार्थ से हमारा शुद्ध नए प्रकट होना चाहिए, और शुद्ध नए से हमें हमारे स्वरूप को इस प्रकार से अंगीकार करना चाहिए, सिर्फ विकल्प से नहीं करना चाहिए। ऐसे करके इस गाथा की टीका यहाँ समाप्त होती है। आगे का विषय कल के स्वाध्याय में नहीं।